नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। अमेरिका ने वॉशिंगटन में अफगानिस्तान के दूतावास और न्यूयॉर्क तथा कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में स्थित वाणिज्य दूतावासों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि उसने इन दूतावासों की सुरक्षा और रखरखाव का जिम्मा सोमवार को पूरी तरह ले लिया है और अगला आदेश जारी होने तक बिना अनुमति के कोई भी इनमें प्रवेश नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने 16 मई दोपहर से अमेरिका में राजनयिक और अन्य गतिविधियां औपचारिक रूप से बंद कर दी थीं, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से उक्त कदम उठाया गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। तालिबान ने पिछले साल अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका का अफगानिस्तान के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंध भी नहीं है। बुधवार को मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अगला आदेश जारी होने तक विदेश मंत्रालय के विदेशी मिशन कार्यालय ने उक्त मिशन की समाप्ति की सुरक्षा और संरक्षण का पूरा दायित्व संभाल लिया है। इसमें अमेरिका स्थित अफगानिस्तान के दूतावास या वाणिज्य दूतावास की सभी वास्तविक संपत्ति, अभिलेख और वित्तीय संपत्ति शामिल हैं। अमेरिका में सीनेट चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में लगी है। नॉर्थ कैरोलिना से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार टेड बड ने अमेरिकी सीनेट के लिए हुई प्राइमरी में जीत हासिल की है और अब उनका मुकाबला उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश चेरी बियर्सली से होगा। बियर्सली डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं। केंटकी के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के चार्ल्स बुकर ने नामांकन के लिए प्राइमरी में जीत दर्ज की, जबकि रिपब्लिकन की ओर से रैंड पॉल इसमें विजयी हुए हैं। पेंसिल्वेनिया में गवर्नर के लिए हुए प्राइमरी में रिपब्लिकन की ओर से डगलस मासिट्रियानो ने जीत दर्ज की है। जॉन फेटरमैन पेंसिल्वेनिया में अमेरिकी सीनेट चुनाव के लिए डेमोक्रेट के उम्मीदवार होंगे। मंगलवार को हुई इन प्राइमरी के नतीजों से ही स्पष्ट होगा कि इस साल के अंत में होने वाले सीनेट चुनाव में दोनों दलों के बीच मुकाबला कितना कड़ा होगा। इस साल कांस फिल्म महोत्सव रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के एक वीडियो संदेश के साथ मंगलवार को शुरू हुआ। गौरतलब है कि वर्ष 2020 का कांस फिल्म महोत्सव रद्द कर दिया गया था, जबकि पिछले साल ये बहुत लघु स्तर पर आयोजित हुआ था। ईवा लोंगोरिया, जूलियने मूर, बेरेनिस बेजो और नो टाइम टू डाई की अभिनेत्री लशाना लिंच सहित कई सितारे मंगलवार को 75वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन और माइकल हेजानाविसियस की फिल्म फाइनल कट के प्रीमियर के लिए कान के रेड कार्पेट पर नजर आए। यूक्रेन में रूस का युद्ध कान समारोह के दौरान चर्चा में रहा। महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान जेलेंस्की ने सिनेमा और वास्तविकता के बीच संबंध के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की एपोकैलिप्स नाउ और चार्ली चैपलिन की द ग्रेट डिक्टेटर जैसे फिल्मों को अपने लिए प्रेरणा बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने का मंगलवार को आदेश दिया। आदेश जारी होने के एक दिन पहले शहबाज ने चीनी प्रधानमंत्री ली किंग से टेलीफोन पर बातचीत की थी और अन्य मुद्दों के अलावा पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा की थी। एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री राणा सनाउल्ला, योजना मंत्री एहसान इकबाल और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बयान में कहा गया है, चीनी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पुलिस के बयान में कहा गया है कि पुलिस ने सोमवार को दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिसने CPEC से जुड़े चीनी नागरिकों के एक काफिले के पास खुद को उड़ाने की साजिश रची थी। शहबाज ने प्रधानमंत्री ली से कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान में काम कर रहे सभी चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। कई खबरों के अनुसार 60 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजनाओं के लिए पाकिस्तान में तैनात बड़ी संख्या में चीनी श्रमिकों ने पिछले महीने कराची विश्वविद्यालय में आत्मघाती हमले के बाद देश छोड़ना शुरू कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नस्लवाद की निंदा की और कहा कि देश को उस नस्ली रिप्लेसमेंट थ्योरी के झूठ को अस्वीकार कर देना चाहिए जिसका समर्थन बफेलो में 10 अश्वेत अमेरिकियों की हत्या करने वाले हमलावर ने किया। रिप्लेसमेंट थ्योरी का कहना है कि अश्वेत लोग श्वेत लोगों और उनके प्रभाव को जानबूझकर कम करके अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। बाइडेन ने पीड़ितों के परिजन एवं स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत में कहा कि अमेरिका की विविधता उसकी ताकत है और घृणित अल्पसंख्यकों को देश को विकृत नहीं करना चाहिए। बाइडेन ने कहा, मैं वादा करता हूं कि अमेरिका में बुराई की जीत नहीं होगी, नफरत कायम नहीं रहेगी और श्वेतों को श्रेष्ठ समझने वालों की बात निर्णायक नहीं होगी। इससे पहले बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने टॉप्स सुपरमार्केट के बाहर बनाए गए अस्थायी स्मारक स्थल में मंगलवार को पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि अमेरिका के बफेलो में एक सुपरमार्केट में 10 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले 18 वर्षीय श्वेत हमलावर ने स्थानीय जनसांख्यिकी के बारे में काफ़ी खोजबीन की थी। उन्होंने बताया कि हमलावर ज़्यादा से ज़्यादा अश्वेत लोगों को मौत के घाट उतारने के मकसद से क्षेत्र का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले ही वहाँ पहुँच गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।